SBS हिंदी सुन रहे हैं। हर शाम हमारा कार्यक्रम अपने रेडियो पर लाइव सुने। आप जब चाहे तब हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
दोस्तों, SBS हिंदी की लोकल टैलेंट सीरीज में आज लेकर आया हूँ बिल्कुल खास मेहमान। ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, भारत से भी नहीं है, ये हैं हमारे पड़ोसी मुल्क न्यूजीलैंड से। डॉक्टर रेचल सिंह, SBS के हिंदी कार्यक्रम लौटते परिंदे में आपका स्वागत है।
थैंक यू सो मच अमित, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका लिया और आपने सही कहा, हम लोग आपके नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं।
जी, पड़ोसी होने के नाते हम पड़ोसी फेसबुक पर भी हैं। मैंने आपके काफी काम देखा है, लगभग 4 फिल्में आप बना चुकी हैं और वो भी न्यूजीलैंड में। भारत से न्यूजीलैंड का सफर आपने कैसे तय किया?
अमित देखिए, प्रोफेशन से तो मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, खैर हिंदुस्तान में रहते थे और सब लोग विदेश तब जाने का हुआ, लोगों को अमेरिका जाना था, यूके में जाना था, इनफैक्ट हम लोग को काफी ऑफर आया, लेकिन मेरी बेटी छोटी थी तो मेरे को तमाम अमेरिका और यूके का वेदर ठीक नहीं लगा, अमेरिका मेरे को कुछ ज्यादा पसंद, तब न्यूजीलैंड एक नया नया डेस्टिनेशन था, इनफैक्ट लोगों को न्यूजीलैंड के बारे में मालूम भी नहीं था, तो मैंने कहा ऐसी जगह चलते हैं जो शांत हो, जहाँ पर भागा दौड़ी न हो, बच्चों के साथ अच्छे से टाइम बिता सके, उनको रेस कर सके, तो हमने फैसला किया कि हम न्यूजीलैंड आए। जब इंडिया में थे तो सबसे पूछा गया आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं, हमने कहा ये कहाँ है, स्विट्जरलैंड के बाजू में, लोग सोचते थे न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड बिल्कुल बराबर है, तो बहुत फनी चीज होती थी जब हम वापस जाते थे तो लोग कहते आप कहाँ न्यूजीलैंड में कहाँ, तो हमको बताना पड़ता था न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बाजू में, तब लोगों को न्यूजीलैंड पता चलता था, लेकिन अब आई थिंक फिल्म एक ऐसी चीज है जो न्यूजीलैंड को अब आज की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट कहते हैं ना हेवन डेस्टिनेशन जाना चाहते हैं, तो आज की तारीख में इतने सालों के बाद अब न्यूजीलैंड को लोग पहचानने लगे।
जी, सुनने वालों को ये भी बताना चाहूंगा कि डॉक्टर रेचल सिंह ना सिर्फ डॉक्टर के रूप में जानी जाती हैं, फिल्म मेकर के रूप में जानी जाती हैं, बल्कि एक पायनियर हस्ती हैं न्यूजीलैंड की भारतीय कम्युनिटी में, भारतीय समुदाय में, जिन्होंने फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड के मेन स्ट्रीम टेलीविजन पे देसी कार्यक्रमों की शुरुआत की। वो सफर कैसे शुरू हुआ?
अमित तो काफी एक इंटरेस्टिंग दौर था, क्योंकि जब हम लोग आए थे, खैर आप तो जानते होंगे तब तो कोई ये यूट्यूब नहीं हुआ करता था, कोई इंटरनेट नहीं हुआ करता, एवरीथिंग वाज वेरी डिफरेंट, तो हम लोग चाहे कितने भी विदेशी क्यों ना आ जाए, लेकिन एक देसी दिमाग हमारा अंदर हमेशा कनेक्शन रहती है, तो हमने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा कुछ बनाए जिससे हम अपने वाले जो लोकल लोग हैं वो जुड़े रहें। तो मेरा एक पहला टीवी सीरीज था जो न्यूजीलैंड में काफी, अगर आप कभी देखेंगे, माना गया था, इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वन, उसे कहते थे देसी जमोरा विदेशी खेल, वो एक तरह से मैंने एक हॉबी की तरह लिखा था, 13 एपिसोड थे, लेकिन लोगों ने बहुत सराहा, लोगों को बहुत पसंद आया, उसके बाद हम लोग का टेलीविजन का एक ऐसा जर्नी शुरू हो गया कि उसके बाद देयर वाज नो स्टॉप, हमने लोकल प्रोग्राम्स बनाए, श्री बच्चों के क्विज शोज, ड्रामास, कुकिंग शोज, तो ऐसे करते करते काफी साल निकल गया, एंड एवरी फिर एक इंसान होता है कि थोड़े दिनों के बाद सोचता है कि अब व्हाट नेक्स्ट, टेलीविजन के बाद एक बड़ा आप पिक्चर देखते हैं, और आप को बताना चाहूंगी कि हम पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, फीचर फिल्म बॉलीवुड को लाना भी न्यूजीलैंड में हमने इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि पहले पिक्चर लगती थी छोटे छोटे सिनेमाज में जहाँ पर आप एक दिन के लिए जाके दो दिन के लिए, तो हमने कहा जब हम लोग मेन स्ट्रीम में जा रहे हैं तो क्यों ना हम अपनी पिक्चरों को भी मेन स्ट्रीम में लेके आए, तो तब इवेंट्स होता था विलेज सिनेमाज, तो हमने विलेज में पिक्चरें इंट्रोड्यूस की, तो वी बिकेम डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ बॉलीवुड फिल्म्स और यहाँ पर हमने पिक्चर विक्चर, तो धीरे धीरे हमारा ये जो एक छोटा सा पैशन था वो बढ़ता बढ़ता गया, एंड वी बिकेम इनटू अ बिग प्रोडक्शन हाउस, तो उसके बाद हमने कहा जब पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्यों ना हम पिक्चर भी बना लिया जाए, सो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड एंड दैट्स हाउ वेयर वी आर, उसके बाद हमारी 4 फिल्में बन चुकी हैं।
4 फिल्मों पे आऊं, उससे पहले जानना चाहूंगा कि जब आपने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया, बॉलीवुड को न्यूजीलैंड में दिखाया, तो रिसेप्शन कैसा था भारतीय समुदाय के अंदर?
आई थिंक दे वेलकम्ड इट वेरी मच, क्योंकि वरना क्या होता था कि आपको कोई पिक्चर देखना है तो आपको कहीं दूर किसी जगह एक, क्योंकि वहां पर तब तो सिनेमाज बहुत छोटे होते थे, तो 100 लोगों की या 200 लोगों की कैपेसिटी होती थी, तो हम लोगों ने जब इंट्रोड्यूस किया कि हम अपनी पिक्चरें क्यों ना अच्छे स्क्रीन पे दिखाएं, तो इनफैक्ट पीपल people are very, very happy about it, that they could see it over a nice, aap jaiye, achhi cinema seatings mein baithi jaiye, achhe theater mein dekhiye. Aur uske baad theaters ke andar picture lagne lag gayi and people started, it became like, ab to aaj ki tarikh mein to it's become common ki aap hearts aur events mein aapki Hindi picture aati rehti hai.
Ji.
So, I think we have been a pioneer in most of the media work we have done, Ji. Including films as well.
Ji.
So, that's how the journey was.
तो जब आपने फिल्में बनाने का सोचा तो आपका तो बैकग्राउंड ही 15 साल के अंदर टीवी और फिल्मों में हो गया, तो आपको न्यूजीलैंड की तो नॉलेज हो गई, भारतीय समुदाय को क्या चाहिए एज अ रेसिपी जो होता है ना फिल्म की रेसिपी के लिए, तो कुछ मुश्किलें तो जरूर आई होंगी, चार फिल्में बनाना आसान तो नहीं रहा होगा न्यूजीलैंड में.
यस, इन फैक्ट मुश्किल, हमने पहली जो पिक्चर बनाई थी वो हमने इंग्लिश बनाई थी, उसमें हमने कुछ बॉलीवुड स्टार्स को लिया था.
जी.
लेकिन फिर क्या होता कि बॉलीवुड से बार बार आप ला नहीं सकते, एक तो बजट आपके कंस्ट्रेंट होते, एक हम लोग इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं, हमें एक सरकार की तरफ से कोई इंसेंटिव या सब्सिडी या कहते हैं ना एक फंडिंग नहीं मिलती, ओन मनी विच वी इन्वेस्ट. पर हमने कहा ऐसा करते हैं कि लेट्स स्टार्ट विथ यूजिंग लोकल टैलेंट्स, तो हमने इंग्लिश पिक्चरों पे ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जानते होंगे, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो बच्चे लोग जो एक्टर्स लोग हैं वो इंडियन लोगों को कहीं पे मेन स्ट्रीम में मौका नहीं मिलता आज की तारीख में, कि आप अगर इंडियन हो तो आपको एक एक्स्ट्रा का छोटा सा रोल मिल जाएगा. जैसे एक यहाँ पर सोप है जो बहुत पॉपुलर है, वो 30 साल से चला जा रहा है, तो उसमें अगर कभी इंडियन की एक्स्ट्रा की जरूरत होगी या कुछ होगा तो वो रोल मिला है. तो हमने, हमारा नाम अगर आप देखेंगे, एक कंपनी हमारी कहती है ड्रीम्स प्रोडक्शन, बेसिकली एम अ वेरी बिग विजनरी. मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को वैसे ही, एक तरह से टैलेंट हमारे बच्चों के अंदर है तो उनको वैसे ही एक्सपोजर मिलना चाहिए जो मेन स्ट्रीम के अंदर हो.
बिल्कुल.
तो हमने अपने सारे बच्चे लोकली यहाँ के लिए, जो जिन्हें एक्टिंग का शौक था, इनफैक्ट कितने लोग तो बॉम्बे गए, काफी धक्के खा के वापस आए हुए हैं, तो हमने उन्हीं से अपना एक टैलेंट बैंक बनाया. तो हमने अपना डायरेक्टर जो है दिवेश सिंह, ही इज वेरी गुड, ही वो एक अपने यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर HOD भी रह चुके हैं, तो उन्होंने अपना टाइम निकाला, उन बच्चों को ट्रेन किया. उनके अंदर काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमने कहा कि अगर आप जानते हैं सिनेमा इज वेरी डिफरेंट टू थिएटर स्टेज, उनके अंदर हमको एक्टिंग सिखाना आसान काम नहीं है, पर हमने उनको करवाया, कोशिश की हमारी कि उनके अंदर 100% कमिटमेंट होती है, तो हम लोग भी अपना 100% देते हैं. तो आज की तारीख में अब वही हमारे बच्चे जो कल के कुछ नहीं थे, दे हैव ऑल बिकम स्टार्स इन देयर ओन आईज, नॉट इवन इन देयर ओन आईज, इन द मेन स्ट्रीम मीडिया. तो काफी लोगों को यहाँ पर उनको उठाया गया, अब वो मेन स्ट्रीम के अंदर टेलीविजन शोज करते हैं, अभी कुछ हॉलीवुड की प्रोडक्शंस आई हुई हैं, उनके अंदर वो लोग कुछ काम मिलते हैं. तो इट्स ग्रेट टू सी आवर यंग पीपल डू सो वेल, राइट?
और जब लोग इनको पर्दे पे देखते हैं, इनके माँ बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, दोस्त यार या जो समुदाय के लोग जब पर्दे पे आपकी फिल्म देखते हैं, न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड की थीम पे बनी हुई फिल्म हो, तो कैसा रिसेप्शन होता है वहाँ?
एक्चुअली आपको बहुत सरप्राइज होगा कि हमारे जब बच्चे, ये लोगों को थिएटर में जब जाके, अभी हमारी लकी एक पिक्चर बनी है जिसके अंदर हमने 2 या 3 नए लड़के जिन्होंने कभी फिल्म नहीं की, उन्होंने देखा, मीडिया आई थी, काफी कुछ हुआ, काफी बड़ा प्रीमियर रहा था इस फिल्म के लिए. मुझे फॉग यानी कि फेस्टिवल ऑफ ग्लो अमेरिका में बेस्ट प्रोड्यूसर अवार्ड भी मिला, क्योंकि हम लोग के टैलेंट. और जब उन्होंने पर्दे में देखा, किसी को ये नहीं मालूम था कि ये इनकी पहली पिक्चर है, एंड दे वर इन फैक्ट, उनको लोगों को वो नए लड़के ज्यादा पसंद आए, यानी कि जो जिन्होंने पहली बार पर्दे में काम किया और जो कुछ बड़े ट्रेंड और एक्सपीरियंस थे उन लोगों ने उनकी सराहना नहीं की, लेकिन जो हमारे यंग बच्चे हैं उनकी इन्होंने ज्यादा सराहना की. तो ये डिफरेंस हो जाता है. और आप दे हैव, आई थिंक द फैमिली वाज वेरी सरप्राइज्ड कि दे कुडंट बिलीव कि उनके बच्चे इतना अच्छा कुछ पर्दे पे भी कर सकते हैं. इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर एक एक्टिंग का कीड़ा होता है, हर इंसान एक एक्टर होता है, पर उसको एक मौका मिलना चाहिए कि उसको कहाँ पे दिखाई दे, अपने आप को कैसे वो प्रदर्शन करे.
जी रिचल जी, ये जानना चाहूंगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में लोकल टैलेंट सीरीज चलाता हूँ SBS हिंदी के लिए, कई लोगों से बात करता हूँ, युवा टैलेंट हैं, कई लोग जैसे आपने कहा कि बॉलीवुड में धक्के खा के आ गए, आपको लगता है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, आप जैसे विजनरी हैं जो फिल्मों में काम कर रहे हैं, टीवी में, वो मिलके काम कर सकते हैं और यहाँ एक इंडस्ट्री डेवलप कर पाएंगे भारतीय मूल के लोगों के साथ?
बिल्कुल. इनफैक्ट आई थिंक मैं जितने भी ऑस्ट्रेलिया के फिल्म मेकर हैं, मैंने उनसे कहा कि हम लोग एक कंसोर्टियम बनाते हैं जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिजी के जो भी, क्योंकि हम लोग एक ओशियाना ग्रुप जिसे कहते हैं, इधर हम लोग दूर पड़ जाते हैं, हॉलीवुड से भी दूर है, बॉलीवुड से भी दूर है, तो ये कहाँ पे जाए. तो मैंने इनिशिएटिव लिया है और मैंने काफी फिल्म मेकर्स को कॉन्टेक्ट भी किया. सिडनी में 2-3 लोग हैं जिन्होंने फिल्म बनाई है, मेलबर्न में 1-2 लोग हैं और ब्रिस्बेन में 1-2 लोग हैं. तो हमने कहा कि ऐसा करते हैं कि जो हम लोग अगर मिलके करेंगे तो वो ही बात होगी ना, 10 अगर 10 उंगली इकट्ठे मिल जाएगी तो ज्यादा हम लोग कुछ कर सकते हैं, यानी कि इंडिविजुअल. तो आई एम इन कॉन्वर्जेशन एंड आई एम होपिंग कि ये लोग भी हमारे साथ जुड़ जाए, तो हम लोग एक फिल्म फेस्टिवल जहाँ पर जो लोग फिल्म बना रहे हैं एक तरह से एक बड़ा सा हम लोग भी कर सके तो अच्छा रहेगा. तो कोशिश तो हमारी है एंड आई थिंक वी आर वर्किंग टूवर्ड्स इट. मे बी इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स और सो आई थिंक ये होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअली तो हम लोग पिक्चर बना लेते हैं लेकिन पिक्चर बनाकर आप एक होता है ना एक अपना प्रोडक्ट बना के अगर आपने घर पे बैठ के प्रोडक्ट देखना है तो उसका फायदा नहीं है. हम चाहते हैं कि हमारी फिल्में ट्रैवल करें, लोग देखें, तो यही हमारा पर्पज है. इसीलिए हमारी जो फिल्में हैं मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स में जाती हैं और हम लोग फीजी के अंदर हमने रिलीज कर पिक्चर न्यूजीलैंड के अंदर रिलीज किए, क्योंकि ये फिल्म हमारी इंग्लिश में होती तो इंडिया में थोड़ा मुश्किल होता है. यूके, यूएसए, कनाडा इज अ बिग मार्केट, प्लस हमारी फिल्म्स अब ऑनलाइन भी आने लग गई हैं क्योंकि अब ऑनलाइन एक मार्केट हो चुकी है.
बिल्कुल जी. चलते चलते आपसे जानना चाहूंगा कि अगला फिल्म प्रोजेक्ट क्या है आपका, थोड़ा सा बताइए सुनने वालों को उसके बारे में.
देखिए ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे मैं कहूंगी, ये पिक्चर का नाम है गैंगस्टार्स और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये फिल्म के अंदर कुछ हमारे टैलेंट ऑस्ट्रेलिया से भी आए. तो आई एम वर्किंग विद फ्यू पीपल कि सिडनी में ऑडिशन हो जाए हमारे, मेलबर्न में ऑडिशन हो जाए ताकि टैलेंट को मौका मिले, क्योंकि अभी मैं काफी यंग लोगों से बात कर रही हूँ जो सिडनी में है, जो पढ़ मतलब जिन्होंने फिल्म कोर्स किया है सिडनी से लेकिन उन्हें अभी तक कोई मौका नहीं मिला है. तो हम लोग एक तरह से एक ग्रुप बनाएंगे और हम चाहेंगे कि ये लोग हमको कॉन्टैक्ट करें, हमारे आपके थ्रू कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं विच इज और या फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं. तो ये मौका हम दे रहे हैं हमारे टैलेंट को ऑस्ट्रेलिया के अंदर ताकि ये हमारी एक इंडो ऑस्ट्रेलियन फिल्म जिसे कहते हैं ना बन जाए, इंडो न्यूजीलैंड की एक तरह की, जैसे लोग हम लोग को देखें हमारी पिक्चरों को और ये पिक्चर डेफिनेटली इंडिया के लिए ही बन रही है एंड इट्स अ फुल हिंदी कॉमेडी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट अ गुड टैलेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एज वेल.
रेचल जी, SBS हिंदी में बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
थैंक यू सो मच अमित एंड अप्रिशिएट दैट आपने हमको एक तरह से ढूंढ निकाला और हम चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया भी हमारे लिए एक नेक्स्ट होमलैंड बन जाए.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए धन्यवाद. पूरा कार्यक्रम कैसे सुने ये जानकारी के लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं.